नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो जो हम प्रार्थना उच्चारण करते हैं वो पेज नंबर एक में है आपके भगवद गीता के। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सबका पुनः स्वागत है इस तीसरे सत्र में। तो दो दिन से हमने भगवद गीता का जो एक संदेश है भगवान का उसके ऊपर हमने चर्चा की थी और ये भी समझ लिया था कि इस भौतिक जगत में दुख प्राप्त करना बहुत सरल है और सुख प्राप्त करना क्या है अत्यंत कठिन है। इसलिए शास्त्र कहते हैं इस संसार में जो दुख है जीवन में वो पहाड़ों के समान है और जो सुख है वो एक तिल का, तिल होता है ना छोटा सा मस्टर्ड सीड, उसके साइज का सुख व्यक्ति को जीवन में अनुभव होता है। वो मस्टर्ड सीड को क्रॉस करता है व्यक्ति तो बहुत बड़ा दुख का पहाड़ उसके सामने खड़ा रहता है। तो ये मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान है। तो पद्म पुराण ये वर्णन करता है कि कितने प्रकार के शरीर इस जड़ जगत में है। तो भगवान भगवद गीता में भी घोषित करते हैं अहम बीज प्रदापितः मैं फादर हूं, बल्कि भगवान कहते मैं ही सब कुछ हूं। पिता महर्ष जगतो माता धाता पिता मह, मैं माता हूं पिता हूं ग्रैंड फादर हूं आपका सब कुछ हूं। तो वैसे ही भगवान पद्म पुराण में यह वर्णित करते हैं कि जलजा नव लक्षाणि स्थावरा लक्ष विंशति क्रमया रुद्र संख्यका पक्षिनाम दश लक्षणः त्रिंश लक्षाणि पशवा चतुर लक्षाणि मानुषः। कि कितने प्रकार के जीव इस संसार में है, जैसे हम सुनते हैं हमेशा कितने प्रकार की योनियां हैं 84 लाख प्रकार की। जिसने कभी शास्त्र पढ़े भी नहीं हो सुने भी नहीं हो कम से कम उसको ये बेसिक ज्ञान का अंडरस्टैंडिंग होता है। तो शास्त्र कहते हैं इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो शास्त्र कितने परफेक्ट हैं और ये शास्त्र किसी जाति समाज या केवल मनुष्यों के लिए नहीं है बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए है ये सारी शिक्षा। हाँ, इस पूरे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, ये 14 लोकों के सारे जीवों के लिए है ये शास्त्र शिक्षा प्रदान करते हैं। तो पद्म पुराण कहता है कि जल में निवास करने वाले कितने जीव है, जलजा नव लक्षाणी कितने लाख, 9 लाख। कहते स्थावरः लक्ष विंशति, स्थावरः का मतलब है किस पृथ्वी में जो स्थावर है जो हिलते नहीं है वृक्ष आदि है, तो ये कितने हैं, 20 लाख प्रकार के हैं। क्रमया रुद्र संख्या का, क्रमया मीन्स क्रमी, कीट आदि कितने हैं, रुद्र कितने हैं, रुद्र 11 रुद्र है ना, शिव जी के जो विस्तार है, तो वैसे ही 11 लाख प्रकार के रेंगने वाले या कीट आदि हैं। और फिर पद्म पुराण कहता है पक्षिनाम दश लक्षणम, पक्षी 10 लाख प्रकार के हैं। त्रिंश लक्षाणि पशवः, 30 लाख प्रकार के पशु हैं। और चतुर लक्षाणि मानुषः, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। तो हमारे वैज्ञानिक कितना भी प्रयास करें फिर भी वो इसकी गिनती नहीं कर पाते, हाँ वो ये ढूंढ नहीं पाते कि जो पक्षी भी हैं 10 लाख प्रकार के हैं उनके लिए क्या है, असंभव है कितना भी वो अपना प्रयास करे। लेकिन शास्त्र हाँ ये हमें प्रदान करते हैं कि इतने प्रकार के शरीर हैं। तो वास्तव में ये शरीर इतने प्रकार के क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि हमारी डिजायर्स इतने प्रकार की हैं। हाँ कितनी है हमारी इच्छाएं, अनंत इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं की तृप्ति करने के लिए ये अलग अलग शरीर दिए गए हैं। और इन अलग अलग शरीरों में जाता है जीव और अलग अलग प्रकार का भोग करता है अपनी इच्छा की पूर्ति करने हेतु। तो ये जो 84 लाख प्रकार के जो बॉडीज हैं, हाँ शरीर हैं, इनकी रचना वास्तव में ब्रह्मा ने की है। और ब्रह्मा को आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, टेलर कह सकते हैं, है ना, टेलर है ब्रह्मा। टेलर जो टेलर होता है वो कपड़े दे देता है कि नहीं, तो वैसे ब्रह्मा ने हम सब जीवों के लिए ये अलग अलग प्रकार के ड्रेस दिए हैं। कोई कुत्ते का ड्रेस पहनता है ना, कोई बिल्ली का पहनता है, कोई मनुष्यों का है। तो इस प्रकार से अलग अलग शरीर हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए दिए हैं। और ये सारे प्रकृति के नियम के अधीन है, लॉज ऑफ नेचर। और प्रकृति के नियम इतने कठोर है कि जिनकी तुलना नहीं की जा सकती, बल्कि लेकिन कोई भी नियम होते हैं, लॉज होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ लूपहोल होता ही होता है। जो वकील होते हैं वो कुछ ना कुछ लॉज में लूपहोल ढूंढ ही निकालते हैं। तो वैसे ही ये 84 लाख योनियां हैं, इसमें से एक लूपहोल है जिससे बाहर निकाला जा सकता है। वो कौन सा लूपहोल है, मनुष्य जीवन है। कौन सा है, मनुष्य जीवन। इससे जीव सरलता से बाहर निकल सकता है और वो इस भौतिक जंजाल से मुक्त हो सकता है। तो हर एक शरीर के पीछे भी क्या है, उद्देश्य है। ऐसे नहीं भगवान ने सारे शरीर बनाए, ऐसे नहीं मनुष्य बनाया। ये माइक जिसने बनाया होगा उसने भी तो सोचा होगा इसका क्या पर्पज है, किस काम के लिए यूज होगा। ये करताल जिसने बनाया होगा उसने भी सोचा होगा ना इसका कुछ उद्देश्य है। तो हर एक जो बॉडी बनाया है उसके पीछे कुछ पर्पज है, कुछ उद्देश्य है। जैसे गवर्नमेंट ने मेट्रो बनाई, क्या उनको कुछ काम नहीं था इसलिए मेट्रो बना दी, हाँ उद्देश्य है उसके पीछे, सुविधा मिले नागरिकों को जिनका जीवन सरलता से चला जाए। तो वैसे ही हर शरीर के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य है। तो भगवान भी जब भगवद गीता का ज्ञान देते हैं तो उसके पीछे भी उनका क्या है, परम उद्देश्य है। और ऐसे ज्ञान के लिए वो अर्जुन को चूज करते हैं, अर्जुन को निमित्त बनाते हैं। बल्कि अर्जुन को कोई भगवद गीता की आवश्यकता नहीं थी, अर्जुन तो पहले से ही भक्त है और अर्जुन पहले से ही भगवान का स्मरण कर पा रहे हैं। जो डिवोटी नहीं है, अभक्त है, उनके लिए जो भगवान से अलग हो गए हैं, भूल गए हैं, उनके लिए वास्तव में भगवद गीता के ज्ञान की परम आवश्यकता है। लेकिन भगवान अर्जुन जैसे अपने भक्तों का इस्तेमाल करते हैं और उनके माध्यम से हमें ये भगवद गीता का ये जो ज्ञान है वो प्रदान करते हैं। तो अब जैसे मैंने कल कहा था अर्जुन की क्या योग्यता थी, कल आपको एक श्लोक पढ़ाकर सुनाया था मैंने। कौन कह सकता है क्या योग्यता थी अर्जुन की गीता जिनको सुनने को मिली, हाँ दो चीजें थी, भक्तो असी और सखा असी। कृष्ण ने क्या क्या हो, तुम मेरे भक्त हो और सखा भी हो। और भी एक चीज, हाँ जैसे अर्जुन की ये योग्यता नहीं थी कि वो, जैसे कई बार लोग कहते ना अर्जुन ग्रस्त थे इसलिए उनको गीता सुनाई, ग्रस्तों को गीता की बहुत आवश्यकता है, ऐसे नहीं। अर्जुन की योग्यता ये भी नहीं है कि वो ग्रस्त थे, हाँ तो ये सब योग्यताएं नहीं थी। अर्जुन की एक योग्यता थी कि उन्होंने कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार किया था और भगवान से वो ईर्ष्या आदि नहीं कर रहे थे। इसलिए भगवद गीता के द्वारा अर्जुन ये भी जानता है कि कृष्ण वास्तव में सारे जीवों के असली स्वरूप या असली मित्र हैं। इस कारण से अर्जुन भगवद गीता की शिक्षा को स्वीकार करते हैं। और वास्तव में अर्जुन, हम सब जो बद्ध जीव हैं, हम सबका प्रतिनिधित्व करते हैं, हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं। और प्रतिनिधित्व करते हैं तो जो हमारे क्वेश्चंस हैं, हमारी समस्याएं हैं, वो किनके सामने प्रस्तुत करते हैं? कृष्ण के सामने प्रस्तुत करते हैं। इसी कारण से कृष्ण का जो ज्ञान है, कृष्ण जब बोलते हैं तो उनसे जो प्रदान होने वाला जो नॉलेज है, उसको जैसे मैंने कल भी कहा था, अपौरुषेय ज्ञान। कौन सा ज्ञान? अपौरुषेय। क्या खासियत है उसकी? अपौरुषेय का मतलब क्या है? कि जिनमें चार प्रकार के दोष नहीं है, जो चार प्रकार के दोषों से रहित है। भगवान ने संस्कृत में भगवद गीता बोली, संस्कृत का मतलब ही है पवित्र, बल्कि संस्कृत सारे भाषाओं की जननी है, मदर है, जितने भी लैंग्वेजेस हैं। तो सोचो, जो संस्कृत अपने आप में इतनी पवित्र है और उसको भी कौन बोले? कृष्ण बोले, तो कितना परम पवित्र हो सकता है। तो हम सोच सकते हैं कि नहीं, मुझे तो संस्कृत आती नहीं है, तो लेकिन नहीं, कृष्ण का ये जो नॉलेज, चाहे किसी भी भाषा में सुनो, वो उतना ही क्या है? पवित्र करने वाला है। हाँ, इस कारण से शास्त्र कहते हैं, विशेष रूप से भगवद गीता को समझने के लिए रिकमेंड किया जाता है कि व्यक्ति एक निष्ठ होना चाहिए, एक निष्ठावान होना चाहिए। दूसरी चीज कहते हैं कि आत्मसंयम होना चाहिए, आत्मसंयम। आत्मसंयम का मतलब ये भी है कि व्यक्ति को प्रोसेस को स्वीकार करके फॉलो करना चाहिए, कम से कम प्रोसेस को स्वीकार करना चाहिए। और तीसरी चीज भगवान कहते हैं, समर्पण होना चाहिए भगवान के प्रति, और ईर्ष्या से रहित हो, भगवान के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। और हमारे अंदर ये बहुत अच्छी डिजायर होनी चाहिए कि मेरा ये जो अज्ञान है, इससे मैं मुक्त होना चाहता हूं। पहले तो ये महत्वपूर्ण डिजायर है, मैं इग्नोरेंस से क्या होना चाहता हूं? मुक्त होना चाहता हूं। इसी कारण से भगवान कहते हैं, जिसके अंदर ये चीजें नहीं है, उसको गीता का नॉलेज मत दो। हाँ, भगवद गीता है आपके पास, 18वें अध्याय का श्लोक नंबर 67, पेज नंबर 555। तो भगवान कहते हैं, पेज नंबर 555, श्लोक नंबर 67, 18वां अध्याय, इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुशुषवे वाचम न च माम योभ्यसूयति। ये गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो कि न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। तो मतलब इससे हमें बिल्कुल उल्टा होना चाहिए, तब हम भगवद गीता को यथोचित रूप से समझ सकते हैं। तो भगवान हमसे ये आशा करते हैं। तो जो अर्जुन है, जैसे हमने कल सुना कि अर्जुन हताश हो गए, बड़े उत्साह के साथ निकले थे अपने रथ के ऊपर बैठकर युद्ध करने के लिए, और जैसे युद्ध स्थल में गए और कृष्ण को आदेश दिया, हे कृष्ण, मेरा रथ सेनाओं के बीच में ले चलो। कृष्ण ले गए, और जैसे सेनाओं के बीच गए तो भगवान ने क्या कहा? ये तुम्हारा ताऊ है, चाचा है, मामा है, भांजा है, पुत्र है, मित्र है। तो अर्जुन तो बिल्कुल दोनों कांपने लगे। इतना बड़ा योद्धा, असाधारण, अर्जुन के गुणों का वर्णन किया जाए महाभारत में तो कई घंटों की चर्चा हो सकती है केवल अर्जुन के बारे में। तो अर्जुन कहते हैं हताश हो गए, अर्जुन इतने बड़े योद्धा रोने लगे। अब सोचो, अर्जुन रोते रोज आते हैं और कृष्ण को कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और उसके बाद, और जैसे कल हमने ये भी कहा कि अर्जुन ने चार रीजन दिए थे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, फिर उसके बाद जो अर्जुन ने कदम उठाया वो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन की क्या है? शुरुआत है। और वो कदम, वो जो स्टेप है, हर एक व्यक्ति को उठाना चाहिए अपने जीवन में। क्या कदम उठाया था भगवान अर्जुन ने? मतलब अर्जुन जब हताश होता है तो अर्जुन क्या करता है? भगवान के शरणागत हो जाता है। जनरली अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और इतनी बातें बोलने लगा कृष्ण को, ये दिखाने लगा कि मैं, मेरे पास भी ज्ञान का भंडार है, मैंने भी शास्त्रों से सुना है, अलग अलग मुनि ऋषियों से सुना है। कृष्ण तो शुरुआत में कुछ भी बोल नहीं रहे थे, बिल्कुल शांत थे और बोलते जाओ बोलते जाओ। जब अर्जुन ने देखा अब बोल बोल के मेरी समस्या का समाधान नहीं होगा तो क्या करना होगा, पूछना पड़ेगा कृष्ण को। घर में भी होता ना कई बार, बच्चे बोलते रहते बोलते रहते बोलते रहते हैं, माता पिता बड़े शांत होते हैं, फाइनली बच्चा माता पिता के पास जाकर बोलता है कि नहीं नहीं आप ही मेरी हेल्प करो प्लीज। तो वैसे ही स्थिति अर्जुन की हो गई। कृष्ण बोल नहीं रहे थे शुरुआत में, केवल क्या कर रहे थे, सुन रहे थे, भगवान जानते हैं। तो जब अर्जुन बोलते रहा, और हमारी स्थिति भी वैसे ही है कि हम भी अपने जीवन में उस रेशम के कीड़े के भांति हैं। रेशम का कीड़ा अपने लार से क्या करता है, जाल बुनाता है अपने चारों ओर, जाल बुलाते रहता है बुलाते रहता है, और फाइनली क्या होता है, उसी के अंदर रह के मर जाता है, बाहर नहीं निकल पाता। हम भी अपने जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जाल बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, और जब बुढ़ापा आता है, अंतिम समय आता है, तो हमें कोई इस भौतिक परेशानी से बाहर निकालने वाला नहीं होता। और हम जितना मर्जी फिर चिल्लाते रहे, बोलते रहे, कुछ सॉल्यूशन ढूंढते रहे, लेकिन हम क्या है, हेल्पलेस है। जैसे कोई व्यक्ति जंगल में जाता है और वहां जाकर जो कुआं हरी घास से ढका होता है उसमें जाकर गिरे, कोई आसपास है उसको सुनने के लिए, नहीं है। वैसी स्थिति हर एक व्यक्ति के जीवन में है। इस संसार में अभी सबसे बड़ी समस्या क्या है, व्यक्ति के पास अपना कहने वाला कोई नहीं है। यदि हम कहें वो व्यक्ति वास्तव में सुखी है जिसके पास ऐसा व्यक्ति या क्लोज डिवोटी हो या व्यक्ति हो जिसके पास जाकर वो अपना हृदय क्या कर सकता है, खोल सकता है। ऐसा कोई है इस संसार में, नहीं है। इवन घर में भी कोई व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण रूप से अपना हृदय खोल नहीं सकता। इसी कारण से हर एक व्यक्ति टेंशन में, स्ट्रेस में है, दुख में है। तो यहाँ अर्जुन जब सोचते हैं तो क्या करना चाहिए, तो अर्जुन पहला अपना कदम उठाते हैं, और वही वास्तव में आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। और ये शरीर उसी के लिए मिला है, कदम उठाने के लिए, लेकिन किसके ओर, कृष्ण के ओर। इसलिए शास्त्र कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। ये शरीर माध्यम है धर्म को प्राप्त करने के लिए। तो ये शरीर से हमें पहला कदम उठाना चाहिए कृष्ण की ओर, और अर्जुन ने उठाया, और अर्जुन फिर सॉल्यूशन अपने जीवन में प्राप्त कर पाए। क्या कदम था उनका, भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, पेज नंबर 57। तो अर्जुन ये कदम उठाते हैं, वो कहते हैं कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता यश्रेयसानिच्छितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। अब सोचो जब ये पहला कदम उठाएगा नहीं अर्जुन, तो आगे भगवद गीता की शुरुआत नहीं हो सकती, और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। भगवान को क्या स्वीकार करते, वो अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि शिष्यस्ते हम साधि माम त्वं प्रपन्नम्, हे कृष्ण मैं आपके शरणागत हो गया हूँ, आप मुझे क्या करिए, पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता, मैं पूछ रहा हूँ यह श्रेयसानिच्छितं ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है वो मुझे दीजिए। अर्जुन ने यह नहीं कहा जो मुझे अच्छा लगता है ना वही आप बोलो, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कथाएं सुनने के लिए जाना चाहते है, लेकिन उनको जो अच्छा लगता है वही कहते कि आप ये सब चीजें हमें सुनाओ जो क्या करते हैं हमें अच्छा लगता है। तो डॉक्टर के पास थोड़ी आप जाते हो। साधु का मतलब ही है जो कड़वा बोले, क्या बोले, कड़वा, उस कड़वाहट, जैसे कोई पीलिया की बीमारी होती है तो उस व्यक्ति को हर चीज कड़वी लगती है, और उसकी दवाई क्या है, शुगर को खाओ। शुगर भी टेस्टलेस होती है उसके लिए, लेकिन जब शुगर खाता रहता है तो फिर मिठास अनुभव होती है। तो उसी प्रकार से हाँ, जो साधु के शब्द है वो भी हमें कड़वाहट महसूस होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उन्नति करते हैं, प्यूरिफाई होते हैं, शुद्ध होते हैं, तो उसमें क्या नजर आता है, हमें मिठास महसूस होती है। जैसे बच्चों को भी अपने माता पिता के शब्द कई बार बहुत कठोर लगते हैं, जो बच्चे थोड़े अडल्ट हो जाते हैं ना, माता पिता उनको डांटते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो समझदार होते तो पता चलता है कि जो मदर फादर बोल रहे हैं वो मेरे हित के लिए हैं, मेरे लाभ के लिए हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ अर्जुन भी भगवान के शरणागत होता है और सीखना चाहता है। तो इस संसार में भी हम देखते हैं, किसी भी चीज की हमें शिक्षा लेनी है तो हम टीचर को ढूंढते हैं, नहीं हाँ, लेकिन जब आध्यात्मिक जीवन की बात आती है तो हम कहते टीवी ठीक है और उसमें आस्था चैनल, बस मतलब आध्यात्म सीखना है तो हम सोचते आस्था चैनल में देखकर हम भक्ति सीखेंगे या करेंगे, नहीं। इंजीनियर बनना है तो आप टीवी देख के सीख सकते हो क्या? कहाँ जाओगे? कॉलेजेस में जाओगे, टीचर से सीखोगे। लेकिन जो भगवत भक्ति या भगवान की शिक्षा, नहीं टीवी में ही सीखूंगा बस और कुछ नहीं, तो ये मूर्खता है। तो इसी कारण से शास्त्र कहते हैं कि हमें भी ज्ञान प्राप्त करने के दो मार्ग हैं, दो विधियां हैं। एक विधि क्या है, जिसको कहते हैं अवरोह पंथा। अवरोह मतलब डिसेंडिंग, नीचे जाना। अवरोह मतलब जैसे एक व्यक्ति ने अपने गुरु से सुना है और वो आगे आगे जाकर सुनाता है, मतलब ऊपर से नीचे आ जाना, गुरु परंपरा जिसे कहते हैं। और दूसरा विधि क्या है, आरोह पंथा। अब वो विधि अवरोह पंथा मीन्स, जैसे कि किसी को पूछना है कि मेरे पिता कौन है, तो अपनी माता से पूछता है और वो राइट आंसर प्राप्त करता है। और दूसरा ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है, एक है आरोह पंथा, कहते ना आरोहन, आरोहन कहते ना गिर्यारोहन, मतलब ऊपर जाना। तो आरोह पंथा का मतलब है कि आपको जानना है कि मेरे पिता कौन है, तो आप पूरे दिल्ली के लोगों का डीएनए टेस्ट करोगे और पता करोगे कि मेरे फादर कौन है। लेकिन बेस्ट विधि क्या है, अवरोह पंथा, अधिकृत व्यक्तियों से नॉलेज को स्वीकार करना। लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं, वो कहते नहीं यतो मत, पता है कि नहीं लाइन आपको, यतो मत ततो पत, जैसा मेरा मत है वैसा ही मेरा अपना रास्ता है। हर एक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में इस स्लोगन को बोलता रहता है, दोहराता रहता है, लेकिन वास्तव में शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को शास्त्र, साधु और गुरु के मार्गदर्शन में आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसी कारण से आध्यात्मिक जीवन की जो सीढ़ी है, पहली चीज ही है क्या है, कि गुरु का आश्रय लेना, आध्यात्मिक टीचर का होना बहुत आवश्यक है। इसी कारण से शास्त्र कहते आदो गुरु पादाश्रय तस्मात कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, कि सर्वप्रथम स्पिरिचुअल टीचर या आध्यात्मिक गुरु को ढूंढ लेना चाहिए, उनकी शेल्टर ग्रहण करके उनसे शिक्षा लेनी चाहिए। गुरु मतलब कई बार लोग कहते ना, हम कई लोगों को मिलते हैं ट्रेन में यहाँ वहां जाते हुए, कहते हमारे भी गुरु हैं, हमने भी गुरु क्या किए हैं, बनाए हैं। ये ऐसे कि जैसे कोई स्त्री कहती है कि मैं सोनार के पास जाकर, सोने के ज्वेलर शॉप में जाकर मैंने गहने बनाए हैं, क्या बनाए हैं, गहने बनाए हैं, वैसे मैंने क्या बनाया है। तो गुरु कोई गृहस्थों का डेकोरेशन का एटम नहीं है, क्या नहीं है, कोई डेकोरेशन, जैसे गृहस्थ लोगों, गृहस्थ आश्रम में क्या है, हम बहुत सारा सामान रखते हैं, कुत्ते भी रखते हैं, बिल्ली भी रखते हैं, सोफा भी रखते हैं, बहुत सारा घरों में भरा रहता है, उसमें से एक एटम कम होता है जीवन में, वो कौन सा है, गुरु। तो उसको भी सोचते हैं, अरे सबने गुरु बनाया है, मुझे भी क्या करना चाहिए, गुरु बना लेता हूं। तो गुरु कोई लाइफ में डेकोरेशन का आइटम नहीं है या फिर स्टेटस सिंबल नहीं है, है ना, आजकल ब्रांड होता है, मोबाइल इस ब्रांड का होना चाहिए, तो वैसे गुरु बनाना या स्वीकार करना कोई स्टेटस सिंबल नहीं है। इसी कारण से भगवान यहाँ कहते हैं कि एक व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत तभी होती है जब वो अपने जीवन में स्पिरिचुअल टीचर को स्वीकार करता है। और स्पिरिचुअल टीचर या आध्यात्मिक गुरु का कार्य ही है कि जो क्या करता है, व्यक्ति के जीवन के सारे प्रॉब्लम्स को फुल स्टॉप देता है। कौन सा स्टॉप? फुल स्टॉप। और क्या समस्याएं हैं, हमने दो दिन चर्चा कर रहे थे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अर्जुन जैसा व्यक्ति रो रहा है, हमारे जैसे लोग क्या कर रहे हैं, केवल रो ही रहे हैं। सुबह रोते हैं ऑफिस में, दोपहर को रोते हैं, शाम में घर में जाते हैं तो फिर से रोते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। कोई व्यक्ति कह सकता है कि मेरे लिए नीड नहीं है स्पिरिचुअल टीचर को स्वीकार करना, क्योंकि मैं जानता हूं कि कृष्ण भगवान है। मैं ये भी जानता हूं, जान सकता हूं, मैं गीता को खुद पढ़ सकता हूं और तो मैं समझ जाऊंगा। लेकिन नहीं, वास्तव में बड़े बड़े जो देवता गण हैं वो भी क्या हो जाते, भगवान के कार्यकलापों से मोहित हो जाते, वो भी समझ नहीं पाते। इसलिए शास्त्र कहते हैं मोहयन्ति यत् सूरयः, भगवान भी कहते हैं कि मुझे देवता गण भी मुझे जानते नहीं है। तो इस प्रकार से कोई ये ना कहे कि मेरे लिए स्पिरिचुअल लाइफ में आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता नहीं है। भगवद गीता का 331 पेज नंबर और श्लोक संख्या 2 है, जहां कृष्ण कहते हैं नमे विदु सुरगणाः प्रभवम् न महर्षया अहम् आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवता और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूँ। तो भगवान कहते हैं नमे विदु सुरगणाः, देवता गण भी मुझे जान नहीं पाते, तो सर्वसाधारण व्यक्ति की क्या बात कहा कही जाए। तो भगवान स्वयं अपने आचरण से भी सिखाते हैं। कृष्ण जब अवतरित होते हैं तो अपने जीवन में किसको स्वीकार करते हैं, सांदीपनी मुनि को स्वीकार करते, भगवान राम भी, चैतन्य महाप्रभु भी। इसी कारण से भागवतम में कहा गया है रह देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन नभेस्तरितम पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्मा। वो कहते वो व्यक्ति आत्मा का हत्यारा है, जो व्यक्ति को इतना अच्छा मनुष्य का जीवन मिला है जो दुर्लभ है, और ये मनुष्य जीवन या मनुष्य बॉडी जो ह्यूमन फॉर्म है उसकी तुलना एक नाव से की गई है। हम इस बहु सागर में है सारे भौतिक जगत में, और इसका कर्णधार कौन है? यदि किसी नाव में कैप्टन नहीं है तो वो नाव क्या होगी, कहां भी भ्रमित रहेगी, कहां भी गोते खाती रहेगी। तो कैप्टन कौन है इस नाव का? आध्यात्मिक गुरु है। तो हमारी ये नाव जिसकी तुलना बॉडी की तुलना नाव से की गई है, तो हमारे जीवन में भी कैप्टन की आवश्यकता है। बिना कैप्टन के हम इस भौतिक सागर में केवल गोते खाते रहेंगे या अपना जीवन जो है बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए भागवतम कहता है कि जिसको इतना मूल्यवान मनुष्य देह मिलने के बाद भी कैप्टन के रूप में गुरु को स्वीकार नहीं करता है, वो व्यक्ति आत्मा का हत्यारा है। क्या है? आत्मा का हत्यारा है। इसी कारण से शास्त्र हमें प्रेरित करते हैं तस्माद् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। गुरु के पास जाओ और जिज्ञासा करो, तद विज्ञानार्थम स गुरु में वह अभिगच्छेत। इस विज्ञान को समझने के लिए आपको क्या करना होगा, स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करना होगा। जिस प्रकार से अर्जुन स्पिरिचुअल मास्टर या गुरु को अप्रोच करते हैं, तो भगवान भगवद गीता में इस विधि का वर्णन करते हैं स्पिरिचुअल मास्टर को कैसे अप्रोच करना है। 175 पेज नंबर, क्या विधि है आध्यात्मिक गुरु को अप्रोच करने की। भगवान चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बोलते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनास्तत्वदर्शिनः तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो यहाँ प्रोसेस बताते भगवान, और वो कहते किसको अप्रोच करो, कैसे होना चाहिए वो स्पिरिचुअल मास्टर, ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तो वास्तव में जो भगवान को जानता है, भगवत ज्ञान को जानता है, प्रोसेस को जानता है, इसलिए तत्वदर्शी। तो गुरु मतलब ये नहीं कि हम किसी को भी स्वीकार करें, जैसे मैंने कहा अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए। तत्वदर्शी का मतलब ही है जो वास्तव में प्रामाणिक हो, अधिकृत स्पिरिचुअल मास्टर हो, जिसको भगवान वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले गुरु की योग्यता है वो क्या है कि जो आध्यात्मिक गुरु है वो परंपरा में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? परंपरा में, बोनाफाइड जो परंपराएं हैं, जैसे जो इस्कॉन है वो भी एक परंपरा में आता है। पद्म पुराण में वर्णन आता है, संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते विफला मता अता कलो भविष्यन्ति चत्वारा संप्रदायना। कोई भी व्यक्ति इस परंपराओं में नहीं है, संप्रदाय में नहीं है। संप्रदाय का मतलब क्या है? जो उचित रूप से भगवत ज्ञान को यथारूप आप तक पहुंचाता है उसे संप्रदाय कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु चूज करना है या स्वीकार करना है तो उनकी प्राथमिक योग्यता है कि वो इन चार संप्रदाय में होने चाहिए। चार संप्रदाय में होना ये बहुत आवश्यक है। अतो कलो भविष्यन्ति चत्वारा संप्रदायना, पद्म पुराण का ये श्लोक है। चार प्रकार के संप्रदाय कलियुगा में होंगे, तो वो कौन कौन से हैं? श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवा क्षिति पावना चत्वारस्ते कलो भव्या ही उत्कले श्री पुरुषोत्तमात। तो कहते हैं कि चार संप्रदाय, श्री ब्रह्म रुद्र और सनका। तो जैसे हम भी देखते हैं कि हम अपने बच्चों को किसी भी ऐसे वैसे स्कूल में नहीं भेजते हैं जो सरकार से क्या है, मान्यता प्राप्त है, अधिकृत है। तो उसी प्रकार से भगवान भी यहाँ कहते हैं कि इन चार संप्रदायों से हमें आध्यात्मिक गुरु को या नॉलेज को स्वीकार करना चाहिए। तो वो कहाँ से शुरू होते हैं? हर संप्रदाय कृष्ण से शुरू होता है। जैसे जो इस्कॉन है वो ब्रह्म संप्रदाय में है, ब्रह्म मध्वा गौड़ीय संप्रदाय। तो जो भगवान कृष्ण है, हाँ जैसे पेज नंबर 28 निकालेंगे आप तो वहां आपको परंपरा की लिस्ट मिलेगी जो अध्याय 1 के लेफ्ट साइड में है। तो जहां हर जो परंपरा है वो कृष्ण से शुरू होती है और वहां फिर जो मेन एक आचार्य है, डिवोटी है, उनको भगवान ज्ञान देते हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण ब्रह्मा को ये नॉलेज देते हैं। तो एक संप्रदाय शुरू होता है ब्रह्मा जी से, जिसको ब्रह्म संप्रदाय कहता है, और इस्कॉन इस ब्रह्म संप्रदाय में है। इस ब्रह्म संप्रदाय के आगे आचार्य हुए हैं जिनको कहते हैं दक्षिण भारत में उड़ोपी में मध्वाचार्य हैं। दूसरा संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। भगवान ने शिव जी को ये नॉलेज दिया, शिव जी से आगे ये ज्ञान आगे बढ़ता है। रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी आचार्य होते हैं। और तीसरा संप्रदाय है कुमार संप्रदाय, जो भगवान ब्रह्मा के चार पुत्र थे उनसे ये संप्रदाय शुरू होता है। और आगे चलकर निम्बार्काचार्य एक आचार्य, महान आचार्य बनते ही संप्रदाय को कंटिन्यू करते हैं। और जो चौथा संप्रदाय है लक्ष्मी का, जिसको श्री संप्रदाय कहते हैं, और उन्होंने आगे चलकर एक महान आचार्य को एक नॉलेज दिया जिनको कहते हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य, और ये संप्रदाय कंटिन्यू होते हैं। इस प्रकार से जो गुरु है वो महत्वपूर्ण है कि इन चार संप्रदाय में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो कहां से भी उठा, गेरवा वस्त्र धारण किया, लंबी दाढ़ी रख दी और थोड़े से नैतिक शिक्षाओं का नॉलेज देना शुरू किया, व्यक्ति सोचता है कि हाँ स्पिरिचुअल मास्टर है। नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है कि वो ऑथेंटिक संप्रदाय में है या नहीं है। और दूसरी चीज है योग्यता स्पिरिचुअल मास्टर की, वो है श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय मीन्स वो व्यक्ति पारंगत होना चाहिए जिन्होंने अपने गुरु से क्या किया है, सुना है। ये नॉलेज फ्लो होता है गुरु शिष्य परंपरा से, गुरु शिष्य गुरु शिष्य। तो आप उन्होंने उचित रूप से अपने आध्यात्मिक गुरु के द्वारा सुना होना चाहिए। और ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है कि वो जो गुरु है भगवान कृष्ण की सेवा में क्या होता है, निष्ठावान होता है, भगवत सेवा से वो विचलित नहीं होता। जैसे प्रभुपाद जब लंदन गए तो उनको जो जॉर्ज हैरिसन था बिटल ग्रुप का, उन्होंने पूछा, स्वामी जी ये बताओ कौन व्यक्ति भगवत गीता का बोनाफाइड प्रीचर है। क्या पूछा उन्हें, स्वामी जी बताओ कोई कौन सा व्यक्ति अधिकृत प्रचारक है भगवत गीता का, बोनाफाइड प्रीचर। तो प्रभुपाद ने कहा जो व्यक्ति वास्तव में जिसको कृष्ण की सेवा के एडिक्शन है, एडिक्शन को क्या कहते हैं, नशा, अब कृष्ण की सेवा का नशा लगा हुआ है वो क्या है, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है, भगवत गीता की शिक्षा का प्रचार करने का वही है। हाँ, जो कृष्ण के लिए, कृष्ण की सेवा के लिए मैड है, कृष्ण की सेवा या भगवान की सेवा के लिए जो एडिक्टेड है वो वास्तव में उचित या ऑथेंटिक स्पिरिचुअल मास्टर है। और तीसरी योग्यता का वर्णन करते हैं जिसको कहते हैं कि कृष्ण तत्ववेत्ता, वो भगवान को जानने में निपुण होना चाहिए। किबा शूद्र किबा न्यासी, हाँ शूद्र कहने नए किबा विप्रत किबा शूद्र। हाँ, वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी वर्ण और आश्रम में क्यों ना हो, लेकिन जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो व्यक्ति स्पिरिचुअल मास्टर हो सकता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य या शूद्र जो भी है, लेकिन वो कृष्ण तत्व में पारंगत होना चाहिए। इसी कारण से भगवान इस चीज की हमें शिक्षा देते हैं और हमें यंकरेज करते हैं कि वास्तव में आध्यात्मिक जीवन की जो शुरुआत है वो होती है जब हम स्पिरिचुअल मास्टर की शरण ग्रहण करते हैं, और ऐसी शरण ये परम आवश्यक है। और एक जो योग्यता है आध्यात्मिक गुरु की कि वो शास्त्रों के निष्कर्षों में पारंगत होना चाहिए। हजारों हजारों शिक्षाएं हैं इतने सारे शास्त्रों की, लेकिन वो शास्त्रों का जो निचोड़ है, शास्त्रों का जो निष्कर्ष है, उससे उसे ज्ञात होना चाहिए। तो शास्त्रों को पढ़ना या शास्त्रों को समझना उसका सार क्या है, भगवान स्वयं ही बताते हैं 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में, पेज नंबर 478। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम् च वेदैच सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदेव चाहम। पेज नंबर 478 श्लोक नंबर 15वें अध्याय का 478। जहां कृष्ण कहते हैं वेदैच सर्वैर अहमेव वेद्य, वेदों को जानना मीन्स किसको जानना, मुझे जानना, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान और विस्मृति होती है, मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। वेदों का अध्ययन करना मीन्स भगवान कहते हैं मुझे ही जानना, निसंदेह में वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो इस प्रकार से भगवान ये शिक्षाएं प्रदान करते हैं। जैसे प्रभुपाद, ये नहीं कि कोई व्यक्ति बहुत संस्कृत आदि का विद्वान हो तो वही गीता की या शास्त्रों के सार को समझ सकता है, नहीं। श्रील प्रभुपाद एक बार वृंदावन में अपने टेम्पल में थे तो कुछ दो उनको संस्कृत स्कॉलर पंडित मिलने आए, तो उस समय उनको प्रभुपाद ने पूछा, आप इतने सारे शास्त्रों को जानते हैं, संस्कृत आदि के विद्वान हो, बताओ भगवान कौन है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये, किसी को भी मिलते तो ये प्रश्न पूछो किसी भी साधु महात्मा, बताओ भगवान कौन है, वो घुमा फिरा के कन्फ्यूजन उसको रहेगा कि एग्जैक्टली भगवान कौन है। तो वो शांत हो गए, वो सोच रहे थे कैसे बताए कौन भगवान है। तो प्रभुपाद ने देखा गुरुकुल के छोटे छोटे दो बच्चे वहां थे, उनको बोला इधर आओ हरि बोल, इधर आओ। तो छोटे छोटे बच्चे आए, उनको पूछा ये बताओ भगवान कौन है। तो बच्चों ने क्या कहा, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो संस्कृत स्कॉलर्स को कहते देखो हाँ ये बच्चे पारंगत है, आपसे अधिक बुद्धिमान है। हाँ, तो सार क्या है कि भगवान को जानना, और जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो शास्त्रों में भी पारंगत होने चाहिए, क्योंकि अपने शिष्यों के जो संदेह हैं उनको क्या वो दूर करें, हाँ संदेह या डाउट्स आदि को। और एक चीज शास्त्र कहते हैं कि आध्यात्मिक गुरु वो होना चाहिए, उसकी ये भी एक योग्यता है कि वो धन आदि के पीछे पागल नहीं होना चाहिए, धन लोलुप, जिसे क्या कहते हैं धन लोलुप। शिष्य इसलिए रखो ताकि मुझे क्या हुआ हो जाए, बहुत अधिक धन आदि में अर्जन करो और सुख उपभोग करो। जैसे मैं अभी आ रहा था तो एक गाड़ी देखी बड़ी सी, जिसके ऊपर एक आश्रम का नाम लिखा था। तो मुझे अचानक पूर्व ऋषि मुनियों की याद आई, तो मैंने सोचा उस समय ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो उनके पास काम धेनु गाय होती थी, है कि नहीं, अपने यज्ञ आदि करने के लिए। तो आजकल के साधु ऋषि मुनियों के पास तो काम धेनु नहीं रहे, तो मैं सोचा वो क्या रखते हैं अपनी यज्ञ आदि के लिए। तो मैंने सोचा साधु लोग या बड़े बड़े मुनि ऋषि वो अपने पास क्या रखते हैं काम धेनु के बजाय, बड़े बड़े धनवान शिष्य रखते हैं। वो किसका काम करते हैं, काम धेनु का काम करते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से आजकल हाँ जो धन लोलुप है, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, धनम चाहिए, जन्म चाहिए, फॉलोवर चाहिए, सुंदरी चाहिए। हाँ, तो इस प्रकार से धन लोलुप, और वो अपने शिष्यों को भी उसी प्रकार से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वास्तव में आध्यात्मिक गुरु का मेन आशीर्वाद क्या होना चाहिए, कृष्णेर मतिरस्तु, आपकी दिमाग आपकी बुद्धि किसमें लगी रहे, कृष्ण में। जैसे प्रभुपाद एक बार ट्रेन से जा रहे थे अमृतसर से मुंबई, तो उस समय जब ट्रेन में बैठे थे तो दो इंडियंस उनको मिलने के लिए अंदर घुस रहे थे उनके एसी कंपार्टमेंट में। तो उनके शिष्य वहां प्रभुपाद के साथ थे, उनके अमेरिकन दो शिष्य, और ये दो इंडियंस को लगा इतने बड़े स्वामी जिन्होंने पूरे वर्ल्ड में हरे कृष्णा का प्रचार किया है, ऐसा एक भी देश नहीं बचा, चलो उनका आशीर्वाद लेते कुछ हो जाएगा हमारे जीवन में। हाँ, तो ये गए, प्रभुपाद के अमेरिकन शिष्यों को पता था कि इंडियंस आते हैं और हमेशा तंग करते हैं, हाँ, इसलिए उन्होंने सोचा उनको अंदर ही नहीं आने देंगे। तो जो अमेरिकन वो इंडियंस थे दो लोग, वो अपना मुंह दरवाजे से अंदर करते थे, तो प्रभुपाद ने देखा तो उन्होंने कहा चलो ठीक है अंदर आने दो उनको। आए सामने बैठ गए, तो प्रभुपाद ने पूछा कि बताइए क्या क्या चाहते हैं आप। कहते स्वामी जी आपका आशीर्वाद चाहिए। तो अभी स्वामी जी को पूछा आशीर्वाद चाहिए, प्रभुपाद को उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा किस प्रकार का आशीर्वाद दो। एक व्यक्ति कहता है 6 महीने से मेरे घुटने में बहुत दर्द है, स्वामी जी आप क्या करो, इसके लिए कुछ उपाय बताओ। तो गुरु का काम नहीं है सब कसरत कराना, वो तो डॉक्टर के पास जाओ ना, गुरु इसके लिए नहीं है कि आपकी हड्डी में दर्द है, बैक में दर्द है, आपका पेट ठीक नहीं है, सर दर्द हो रहा है, उसके लिए आध्यात्मिक गुरु नहीं है। आध्यात्मिक गुरु का काम है कृष्ण देना, भगवान देना आपको, आपके जीवन का जो परम लक्ष्य है। क्योंकि ये बॉडी तो वैसे ही बॉडी बनाई गई है केवल दुख देने के लिए और किसी चीज के लिए नहीं। हाँ, तो प्रभुपाद ने कहा, फिर प्रभुपाद ने बोला मेरा कुछ असली आशीर्वाद आप चाहते हो तो क्या है। अपने दो शिष्य वहां खड़े थे, अमेरिकन तिलक लगाया हुआ, तुलसी माला पहनी हुई, जप कर रहे थे। उन्होंने कहा ये मेरा आशीर्वाद है, आपको बनना है तो ऐसे बनो, भगवान का नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे पहले भी लोग कई बार होते ना कुल गुरु मीन्स जैसे आसुरों के गुरु है शुक्राचार्य, शुक्र के आचार्य, शुक्र परंपरा से। तो शुक्राचार्य भी जब वामन देव यज्ञ कर रहे थे, बलि यज्ञ कर रहे थे, तो भगवान वामन उनसे मांगने के लिए आए, तो शुक्राचार्य ने पहचान लिया ये तो विष्णु है, ये तो सारा धन ले लेगा। तो उनको सोचा, शुक्राचार्य गुरु थे, उन्होंने सोचा बलि का सारा प्रॉपर्टी धन चला जाएगा तो मेरा मंथली डोनेशन कैसे मिलेगा, मुझे मेरा सैलरी वगैरह कैसे मुझे मिलेगा। हाँ, तो इसलिए जब वो, क्योंकि दान देने से पहले तुलसी हाथ में देकर जल आदि अर्पित करते हैं, तो भगवान के हाथ में जल आदि वो दे रहे थे बलि, जिस पॉट से दे रहे थे उसका जो आगे का छेद था उसमें ये शुक्राचार्य क्या गए, अपने योग सिद्धि से उसके अंदर जाके बैठ गए कि पानी बाहर ना निकले। तो बलि महाराज ने क्या किया, सोचा अरे गुरु का काम है कृष्ण भगवान की सेवा में लगाना, क्योंकि हर एक जीव के अंदर भोग की भावना है। तो गुरु मीन्स कौन, जो कन्वर्ट करता है भोग भाव से सेवा भाव। तो जो कन्वर्ट करे वो वास्तव में स्पिरिचुअल मास्टर है। तो इन्होंने क्या किया, छोटा सा तिनका ले लिया और वो जो छेद था उसके अंदर डाल दिया और इनके आंख में चला गया, किसके आंख में, शुक्राचार्य के, वो रोने लगे। तो इस प्रकार से ऐसे 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 भौतिक जो गुरु हैं, जो क्या करते हैं, अपना जो सुविधाएं हैं शिष्य के द्वारा प्राप्त होने वाले, उस पर पूर्ण रूप से निर्भर रहते हैं और अपने जो शिष्यगण है उनको भ्रमित करते हैं। तो एक और चीज भी है कि आध्यात्मिक गुरु का मतलब है कि जो अपने आचरण से सिखाए, आचरति इति आचार्य, आचरण से जो शिक्षा प्रदान करता है वो वास्तव में आचार्य है। तो इस प्रकार से इससे विपरीत कुछ है तो वो स्पिरिचुअल मास्टर नहीं है। स्पिरिचुअल मास्टर मीन्स भगवान का भक्त होना। भगवान का भक्त नहीं है तो वास्तव में स्पिरिचुअल मास्टर नहीं है। इसी कारण से शास्त्र हमें कहते हैं कि सावधान रहे, और ऐसे लोगों से सुनने की भी आवश्यकता नहीं है। इसी कारण से शास्त्र कहते, पद्म पुराण कहता है, अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोचिष्ट यथापयम। कि कई बार जो भगवान के भक्त नहीं है उनसे हम सुनते हैं, सुनने में बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं लगती हैं, वो यदि किस परंपरा में नहीं है उनसे भी हम कथा सुनते, चाहे वो कृष्ण की कथा ही क्यों ना हो, भगवान की चर्चा ही क्यों ना हो, वो हमारे लिए जहर का काम करता है। जैसे शास्त्र पद्म पुराण कहता है, जैसे आपने दूध रखा है, कोई सांप आकर उसको पीता है चला जाता है, दूध का कलर कैसे रहता है, वैसे रहता है, हमें लगता है ये तो दूध है, लेकिन पीने मात्र से क्या होगा, जहर उसमें मिला होता है जिससे हमारा जीवन नष्ट हो सकता है। इसलिए भगवत चर्चा को भी हमें सुनना चाहिए तो परंपरा के माध्यम से। तो ऐसे नहीं कि अभी बैठा हो तो चलो टीवी में इतने सारी कथाएं आती तो सारी तो भगवान की है, किसी से भी सुनो नहीं। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो सोचते हैं कि नहीं 10 बार अच्छा डॉक्टर है या नहीं है, जब भगवान की बात आती है तो हम आंखें बंद कर लेते हैं। तो इसलिए शास्त्र हमें सावधान करते हैं कि उचित आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए, और शिष्य भी कैसे होना चाहिए, अर्जुन जैसे होना चाहिए। हाँ, जैसे भगवान जो श्लोक हमने पढ़ाया था 4th अध्याय का, जिसमें कहते प्रणिपात, प्रणिपात का मतलब पूर्ण रूपेण निपात, ये भावना धारण करे एक व्यक्ति कि मैं वास्तव में तुच्छ हूं, मुझ में कोई योग्यता नहीं है और मैं मुझे शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर सबसे बड़ी जो भेंट है भगवान वो मुझे प्रदान कर रहे हैं। और दूसरा भावना क्या होना चाहिए डिसाइपल के हृदय में, विनम्रता का भाव, कि सब प्रकार की जो योग्यताएं हैं उनको भूल जाना चाहिए, चाहे मैं भी बड़े बड़े विद्वान हो सकते हैं, भौतिक जगत में बहुत सारे हमारी योग्यताएं हो सकती हैं, बहुत सारे डेजिग्नेशन हो सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल मास्टर के सामने हमें क्या होना चाहिए, इन सब चीजों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि हमारी ये सारी योग्यताएं, ये डेजिग्नेशन हमें डुबाने वाले हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को उनके गुरु कहते, मूर्ख तुम्हें तुम्हार नहीं वेदांत अधिकार, तुम मूर्ख हो, तुम्हें वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं है, तुम क्या करो कृष्ण नाम का उच्चारण करो। और एक योग्यता शिष्य के लिए है, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, मतलब उसको जिज्ञासु होना चाहिए, जानने के लिए सदैव तैयार होना चाहिए, इंक्वायरी करने का मूड उसके अंदर होना चाहिए। और कौन सी इंक्वायरी, वैसे नहीं कि मेरा घुटना दर्द हो रहा है, कौन सी इंक्वायरी, जैसे परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी के सामने की, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरु, कि हे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरु शुकदेव गोस्वामी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो व्यक्ति मृत्यु के नजदीक है, वह मरने ही वाला है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किस नाम का जप करना चाहिए, किसकी सेवा करनी चाहिए, क्या सुनना चाहिए, ये सब चीजें किसने पूछे, परीक्षित महाराज ने। तो इस प्रकार की इंक्वायरीज, इस प्रकार की जिज्ञासा का भाव होना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म कौन है अपने बारे में जानने का प्रयास करना चाहिए। और एक योग्यता शिष्य के लिए कहते हैं कि उसको सुनने के लिए हमेशा लालायित होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए भगवान के बारे में सुनने के लिए, और तैयार होना चाहिए उपदेशों का या आदेशों का, इंस्ट्रक्शंस का पालन करने के लिए। तो इस प्रकार से जब ये भावना होगी तो हम वास्तव में इस दिव्य ज्ञान को सीख सकते हैं या समझ सकते हैं। इसी कारण से एक व्यक्ति को गुरु से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षा क्या है, दे का मतलब है दिव्य ज्ञान, और क्षा का मतलब क्या है, क्षति। दीक्षा का मतलब ही है कि अज्ञान की क्षति हो जाती है जब एक जीव आध्यात्मिक गुरु को अप्रोच करता है और उनसे दीक्षा ग्रहण करता है, तो भगवान ये से ये शरणागत होते हैं अर्जुन, और उनसे ये शिक्षा प्रदान करते हैं। आजकल की दीक्षा तो बिजनेस हो गया है, कई सारे गुरुज हैं वो खड़े हो जाते हैं ऊंचे मंच पर, हजारों हजारों लोग खड़े होते हैं और कहते हैं कि हाथ घुमाकर आप सब दीक्षित हो गए, ऐसा हाथ घुमाकर क्या कहेंगे, आज से आप मेरे शिष्य हो गए और बताइए आपका जो मंत्र आपको अच्छा लगता है उस मंत्र का आप जप करिए। तो इस प्रकार की आज की स्थिति है कलियुगा की। हाँ, गुरु भी क्या है, ढोंगीज हैं, और शिष्य भी। इसलिए शास्त्र कहते हैं आप धोखा खाना चाहते हो तो आपको धोखा देने वाला सामने खड़ा है, आप सही चीज चाहते हो तो भगवान। अर्जुन वास्तव में उचित वस्तु चाहते थे, उचित सॉल्यूशन चाहते थे, उनके लिए कौन थे खड़े सामने, कृष्ण स्वयं। तो उसी प्रकार से हमें सोचना है अपने लाइफ में कि मैं धोखा खाना चाहता हूं या धोखा खाने से बचना चाहता हूं। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं दीक्षा स्वीकार करना, क्योंकि दीक्षा स्वीकार करने से ही मनुष्य का जीवन परिपूर्ण हो जाता है, अन्यथा शास्त्र कहते हैं उसका जीवन एक पशु के समान है। किसके समान है, पशु के समान। दीक्षा मीन्स न्यू लाइफ, नया जन्म उसका शुरू होता है, क्योंकि हम माता पिता से जन्म ग्रहण करते हैं, पशु भी जन्म ग्रहण करता है, लेकिन नॉलेज के कारण, स्पिरिचुअल मास्टर के शेल्टर के कारण हमारा नया लाइफ की शुरुआत हो जाती है। और दीक्षा का मतलब ही है कि अज्ञानता को कट करना। जैसे ना माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो एक नाल होता है, क्या कहते हैं उसको, नाल से जुड़ा रहता है बच्चा, तो डॉक्टर क्या करता है, कट देता है। तो वैसे ही हम जीव, जो जीवात्मा है उसके लिए वो नाल क्या है, फॉल्स ईगो है, अहंकार, मिथ्या अहंकार, जिसके कारण वो इस शरीर से जुड़ा हुआ होता है और वो अपने आप को बॉडी मान लेता है। और फिर ये यही बड़ा, सबसे बड़ा इग्नोरेंस, सबसे बड़ा अज्ञान क्या है कि मैं ये शरीर हो और शरीर से संबंधित जो भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वो सब क्या है, मेरे है। ये सबसे बड़ा अज्ञान है। और इसी कारण से जो स्पिरिचुअल मास्टर है उस डॉक्टर के समान है जो नाल को काटते हैं, वैसे हमारे अज्ञानता या फॉल्स ईगो को काटते हैं आध्यात्मिक गुरु। और यही महत्व है कि वैष्णव गुरु को स्वीकार करना चाहिए। पद्म पुराण कहता है अवैष्णव उपदिष्टेन मंत्रेन निरयम व्रजेत पुनच्च वेदिना सम्यक ग्राह्ययत वैष्णव गुरु। जो वैष्णव गुरु नहीं है उनसे दीक्षा लेकर जो शिष्य है दोनों भी नरक में जाते हैं। पद्म पुराण क्या कहता है, जो दीक्षा देने वाला भी, दीक्षा लेने वाला भी नरक जाता है यदि वो देने वाला क्या नहीं है, वैष्णव नहीं। और वैष्णव मीन्स भगवान का भक्त, वैष्णव मीन्स विष्णु का भक्त, जैसे शैव होते हैं शिव के फॉलोवर। तो इसलिए शास्त्र ये चीज पर जोड़ देते हैं। तो भगवत गीता हम इस प्रकार से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं अर्जुन। और भगवत गीता में भगवान पांच विषयों की चर्चा करते हैं, एक तो भगवान की, एक जीव की, एक प्रकृति की, एक काल की और एक कर्म की करते हैं। तो ये सारा वैदिक ज्ञान तीन भागों में बटा हुआ है। एक है संबंध ज्ञान, ये जानना कि इन पांचों में आपस में क्या संबंध है, या फिर मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। और दूसरा क्या है, अभिधेय। अभिधेय का मतलब है यदि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है और क्या करना चाहिए उस संबंध को वास्तव में पुनर्जागृत करने के लिए। और तीसरी चीज है जिसको कहते टेक्निकल भाषा में प्रयोजन, मतलब ये सब करने से मुझे क्या प्राप्त होगा, और वो क्या है प्राप्त होना, भगवत प्राप्ति या प्रेम है। तो सारे शास्त्रों में इन तीन चीजों की चर्चा होती है। और अर्जुन इस प्रकार से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो हम कल ट्राई करेंगे, समय तो हो गया, मुझे आज और एक सेशन भी कंप्लीट करना था इसके साथ। तो कल हम चर्चा करेंगे आत्म तत्व के बारे में। भगवान ने तीन नॉलेज बताए हैं, एक है गुह्य ज्ञान, एक है गुह्यतर ज्ञान, और तीसरा क्या है, गुह्यतम। हाँ, तो इन तीन प्रकार का नॉलेज भगवान देते हैं गीता में। तो हम कल इसी को आगे बढ़ाते हैं, और कल विशेष रूप से हम भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में और आत्मा के बारे में, इन तीन विषयों की चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।